होना उनकी सहचरी प्राण। इस दुनिया में आंखें खोलने के साथ ही एक अव्यक्त सी प्रतीक्षा हृदय में लहर लेने लगती है, एक अभंग सांस की। सबसे पहली उम्मीद माँ से जगती है। एक क्षण को वह नज़र से ओझल हुई नहीं कि बच्चा करता है क्यों। गर्भावस्था का वह नाभिनाल संबंध पूरा इन कट जाने के बाद भी उसके नन्हे से हृदय में धड़कता रहता है। जल्दी ही दूसरी संतान हो गई तो वह दूध कट्टू हो जाता है। दूध छुड़ाने की प्रक्रिया वीनिंग कहलाती है। डॉक्टर कहती है कि इसका ढंग से पालन हो तो ही बच्चे का सही मनोवैज्ञानिक विकास हो पाता है। 12 फीट के बाद 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1, फिर 2 एक दिन के अंतराल पर इस तरह धीरे धीरे दूध छूटना चाहिए। और ठीक उसी वक्त उसे अन्य गोदियों का भी अभ्यास करा देना चाहिए जो कि संयुक्त परिवार में तो बहुतायत से उपलब्ध होती है। पिता लजाए भी तो चाचा की, दादा की, दादी की, बुआ की, बीच बीच में नाना नानी की, मामी की, मौसियों की, मामू की, इन गोदियों की बहार उसे बहला देती है और बहलाए रखती है तब तक जब तक कोई विशिष्ट दृश्य उसकी नज़र से गुजर कर उसके मन में अव्यक्त वियोग की वही हूँक न जगा दे जो वसंत की दोपहरी में कोयल की कूंक से जगती है। वह विशिष्ट दृश्य कुछ भी हो सकता है, किसी सिद्ध जोड़े की प्रफुल्ल हंसी, सुखी परिवार का विलास, नदियों में दो दियों का एक साथ मिलकर बहे जाना। कभी मेरे एक संवेदनशील मित्र ने बताया था कि खेत तामते तामते उनके एक मित्र ने 12 बरस की उम्र में उन्हें सांप का केंचुल दिखाया। दोनों मित्र हाथ केंचुल उठाकर निरखते परखते बढ़े तो अगले कदम पर उन्हें एक और केंचुल दिखा। इस पर उनका वह समवयस्क मित्र, जो अधिक गरीब होने के चलते और अधिक प्राकृतिक जीवन जीता रहा था और उनसे भी अधिक अनुभव वृद्ध था, उनको समझा कर कहने लगा, ये नोटेड कामा, यह देखो, यह इसका जोड़ा है। हर जीव जोड़े में होता है, हर जीव का एक जोड़ा होता है, तुम्हारा भी होगा कहीं न कहीं, कभी न कभी तो वह तुम्हें मिल ही जाएगा, ये नोटेड कामा। उसी क्षण में कहते हैं वे अचानक धक से बड़े हो गए और एक अव्यक्त उल्लास में पीड़ा से उनकी छाती लगी ऐठने कि कहाँ होगा उनका जोड़ा, किस हाल में होगा। भारत की किसी भी युवा मन में संकल्प तो यही रहता है कि वह एकनिष्ठ प्रेम का समर्पित जीवन जिएगा। उसके मन में सांस्कृतिक ग्रंथों के रूप में सर्वदा विराजमान होते हैं कुछ आत्मीय प्रसंग जो हमारी जातीय स्मृति का जीवंत हिस्सा बन चुके हैं। इसके कुछ ही उदाहरण गिनाना पर्याप्त होगा। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका प्रसंग, तुलसी का महावाक्य, जेहि कि जेहि पर सत्य स्नेहू से तेहि मिलहि न कछु संदेहू। तुलसी का यह मानना कि राम का नाम जिनको उतना प्यारा है उतना कामी को कामनी प्रिय होती है। काम ही नार प्यार जिमि, लोक में प्रचलित शिव पार्वती के अद्भुत दाम्पत्य के वे सारे प्रसंग जहाँ करुणाभिषिक्त पार्वती शिव से जिद करती हैं कि वे सारे दिन दुखियों का भाग्य बदलें। इसके अलावा कालिदास, जयदेव, विद्यापति, तरह तरह के रसीले लोकगीत, फिल्मी गाने, गजलें। हर स्त्री सोचती है कि सीता का धीरज, राधा की कमनीयता, पार्वती का अद्भुत वाग्विलास, लक्ष्मी की घरपोसू विपुलता सब उसके दूल्हे पर वारेगी, सब वो अपने दूल्हे पर वारेगी। चलने से चारल दुल्हा, सुपली से फटकल हो, दुनिया का सबसे योग्य वर फटक चुनकर उसके माता पिता उसकी खातिर ले आएंगे और उसके बाद राजा रानी की तरह अपने नन्हे से साम्राज्य पर दोनों राज करेंगे। सारी दुनिया का विलास उनके कदमों में होगा। उसका दूल्हा औरों से एकदम अलग होगा, धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित नायकों जैसा। कभी जोर से नहीं बोलेगा, एक थप्पड़ भी नहीं मारेगा, हर बात में राय लेगा। जीवन भर उसकी आँखें उसके प्रेम में नम रहेंगी। एक ही थाली में खाएंगे दोनों, एक ही तकिए पर सोएंगे रोज। बाकी दुनिया से भी स्नेह सौहार्द रखेगा, सबका ही भला करेगा, पर प्रेम का नाता तो मुझसे ही होगा। मेरे लिए ही वह नील कुसुम लाएगा, मैं उसके जीवन का केंद्रीय सच होऊंगी। ऐसे ही छोटे छोटे सपनों की खुराक पर स्त्री का मन पलता है। बाप के राज अधरगत राज, दुल्हा के सगरगत राज, बेटवा के अनेरुआ राज। कोष्टक में पिता के राज में दोनों जहान मेरे चरणों में थे, पति के राज में तीनों जहान मेरी गोदी में, बेटे के राज में ही मैं अनाथ हो गई। कोष्ठक में इसके कुछ कारण स्पष्ट उदाहरण हैं, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और उदय प्रकाश के 36 तोले का कर्दनी कोष्ठक बंद। अब जब स्थिति कुछ बदली सी लग रही है और थोड़ा सा राजपाट कुछ स्त्री के हाथों में आ गया है, आर्थिक स्वावलंबन और शिक्षा समृद्ध विवेक उसके वजूद का आकर्षक और घनभूत कर गए हैं, होना तो यह चाहिए कि दाम्पत्य और भी सुंदर सुखद होता। दैहिक विलास के अतिरिक्त बौद्धिक और मानसिक विकास विलास भी उससे जुड़ जाते। तरह तरह की अंतरंग चर्चाएं उसे चारों खूंटों से समृद्ध रखती, जैसे शिव पार्वती के दाम्पत्य को रखती हैं, जहाँ शिव पार्वती दोनों खासे अंतरंग क्षणों में भी लोक को भूलते नहीं, तरह तरह से जीवन का रहस्य सुलझाना चाहते हैं। कभी शिव प्रश्न करते हैं, कभी पार्वती, दोनों मिलजुल कर जीवन और सृष्टि के कई सूत्र खोलते हैं, गुह्य सूत्र भी। ये सूत्र हासिल करने की पात्रता सब में नहीं होती, लेकिन जो दुर्वृत्तियों के क्रमिक उन्नयन द्वारा उन जैसा हो जाता है, यानी कि लोक मंगलकारी और सहज सुंदर सच्चा, उनके सामने गंगा के छल छल धारा जैसा सत्य प्रवाहित होने लगता है। उनका हृदय फूलों की वाटिका हो जाता है और उनका दिमाग फलों का बगीचा। फूल यानी उदात्त भाव, फल यानी वैचारिक सूत्र, तर्क और अंतर्दृष्टि का यह महावलय ही सच्चे दाम्पत्य के रूप में सृष्टि में फूले फलें, भारतीय दर्शन कुल मिलाकर शायद ऐसा ही कुछ कहता है। किंतु जन्नत की हकीकत कुछ और है। दाम्पत्य की वह लोक मंगलकारी एकात्मकता आमतौर पर कहीं भी नजर नहीं आती। घर के बाहर जैसे कलहकारी हिंसक प्रसंग घटित होते हैं, घर में भी बमबारियों का स्वरूप दूसरा होता है। बलात्कार भी किसी और के द्वारा नहीं, पति के ही हाथों पीठ पाट लेने के एक मिनट बाद। यौन शोषण के भी वही 55 सिलसिले, वैसी ही छीछा लेदर, गाली गलौज, मगजमारी, वैसा ही निशंस आतंक। ऐसे में क्या होगा, मन ऊब जाएगा। पिंजरा टंगा भी रहा घर में तो पंछी गायब, मन का पंछी, ये उड़ा वो उड़ा, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहीबो को है आचरज, गए तो अचरज कौन। कबीर के इस दोहे की घोर भौतिक व्याख्या भी संभव है ही। एक बार उड़ ही गया तो चाहे जिस डाल पर बैठे, नीर का निर्माण फिर हो या नहीं, फर्क क्या पड़ता है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, एक दर्शन यह भी बनता है, और दूसरा यह कि एक अवान्तर धारा गुमसुम सी चलती रहे। मोबाइल, इंटरनेट, होटल, मोटल, टूर पार्क और घरनुमा बड़ी गाड़ियां प्रेम की चल चलंत फल्गु धारा को बालों की ओर तो दिए ही रहते हैं। अभिसारिकाओं का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, पर कॉल सेंटर, दौरे वाली 50 नौकरियां, प्राइवेट चैम्बरों की सुविधा और भी कुछ नवीन स्थितियां अतृप्त या दुखी दाम्पत्य के समानांतर एक झिलमिल सा एकांत लाभ आसानी से संभव कर देती हैं। जहां कोई हमदर्द सहकर्मी किसी प्रताड़ित स्त्री के आंसू पहुंचता हुआ अपने भाग्य पर इतराता है, सोचता है कि वह कितना बड़ा शेख है कि मिर्जा गालिब वाली स्थिति में आ गया। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे, एक्स मजनू या पति को ही सही बुरा तो कहती है, तभी किसी तीसरे का स्पेस बना। शब्दों से जाहिर नहीं भी करती है, कुछ तो आंखों से जाहिर हो जाता है कि कोई रंध्र है इसके जीवन में। ना फंस कर स्वीकार करे चाहे छाती पीट कर, पर तीन बुलावे तेरा आवे की स्थिति में आज हर वह स्त्री है जिसने अपने व्यक्तित्व में कोई ओछापन आने नहीं दिया है। एक उदात्त सी समरसता की तलाश में ज्यादातर लोग हैं, इसलिए जो भी आए हैं तेरे पास जाके बैठे हैं कि स्थिति घिराई है और पति परेशान है, हम कहाँ तक तेरी कुर्बत से खिसकते जाएं। जी, पहले तो पत्नियां ही परेशान रहती थी अपने पति की प्रेमिकाओं, प्रशंसिकाओं आदि आदि से। हंसकर या रोकर उन्हें सबके साथ एक खट्टा मीठा रिश्ता कायम करना होता था, और पतियों का कलेजा भी हलर 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 करता है। ड्राइंग रूम में अक्सर पत्नी के रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, प्रेमी, प्रशंसक, पाठक, निर्देशक, संपादक, सीनियर, जूनियर, टीचर, विद्यार्थी, शोधार्थी, बैचमेट, क्लासमेट आदि आ बैठते हैं इतवार को। पहले घुड़कियों से जरा डर भी जाते थे, अब बिल्कुल घर घरौंवा कर लिया है। पतियों से भी दोस्ती गांठ ली है, बच्चों से, बच्चों के दादा दादी से भी, जैसे पवन पानी। जो पवन पानी बन जाएगा घर के बाहर कैसे धकेलाएगा। आधे अधूरे के तीन पुरुषों की तरह का कुछ आपत्तिजनक के आशोभन वे कभी नहीं करते, इसलिए उनको खदेड़ना मुश्किल है। अब की सावित्रियां, पुराने ढंग की सावित्रियां भी इस अर्थ में है कि उनका किसी भी पुरुष मित्र से नर मादा वाला रिश्ता नहीं है। रूमानी या अधरूमानी रिश्ता यह हो सकता है, लेकिन विशेष किसी क्षण में। बाकी वह तर्क वितर्क या भाव उद्दीपित बौद्धिक चर्चा का ही रिश्ता है। किसी की किसी पर आर्थिक निर्भरता भी नहीं है, या आप रखैल आदि कह दें। पते की बात यह है कि इस बृहत्तर बंधु परिवार की सजग देखभाल निजी परिवार के देखरेख में बाधा नहीं बनती, क्योंकि हर औरत 10 हाथों से काम करती है। दुर्गा के से 10 हाथ है औरत के, 10 दिशाओं में फैले हुए, लगातार घर बाहर दोनों के काम निपटाते, सारे बने और अधबने संबंधों को अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम देते हुए। पारंपरिक भूमिकाएं नई औरतों ने छोड़ी नहीं है और नए दायित्व तो भी ले लिए हैं, तो एक तरह की होल टाइमर वह हो गई है। पहले की औरतें घर चलाती थीं तो व्यवस्था में, क्योंकि तो विकल्प नहीं थे। ध्यान देने की बात यह है कि औरतों के आर्थिक संबलन के बाद भी घर चल तो रहे हैं, बल्कि और अच्छी तरह से। मैं फिर से कहती हूँ, पहले की स्त्री सिर्फ तन मन से सेवा करती थी, अब की स्त्री तन मन धन तीनों से करती है, और किसी मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्त्री आंदोलन ने स्त्रियों का स्नेह तत्व बाधित नहीं किया। स्नेह का घेरा बढ़ाया जरूर है, पर बाधित नहीं किया। इस बात पर गौर करने की पूरी जरूरत है, और नई स्त्री के कद का पुरुष बनने की भी। लगातार अपना बौद्धिक आध्यात्मिक विकास किए जाने की, ताकि दुख का दिन डूबे डूब जाए, तुमसे न सहज मन उब जाए। एक मीठी सी चुनौती बनी रहनी चाहिए, एक दूसरे के योग्य बने रहने की, मिलकर आदर्श विश्व गढ़ने की, वरना यह जीवन क्या जीवन है। अब की बरस भेजो भैया को बाबुल। पाली का एक दोहा है जिसमें राजा में से बंदी की बहन फरियाद करती है कि हे राजन, मेरे खातिर मेरे भाई को छोड़ दो। संतान का क्या, वो तो मैं जब चाहे जन्म लूंगी। पति का क्या, वे राह चलते मिलते हैं। ईश्वर की बनाई अनूठी धरा पर भाई तो दूसरा नहीं मिलता। अपने ढंग से हर सुंदर स्त्री हर सुंदर होती है, और पुरुष की मानसिक शारीरिक बनावट कुछ ऐसी होती है कि प्रकृति में हो या स्त्री में, सौंदर्य पहले तो उसको अभिभूत करता है, फिर आविष्ट और अंततः आक्रांत। जो भी इस कायनात में सुंदर है, कोमल है, वह उसके अधीन रहे, उसके अंगीठे के नीचे, अपनी मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती, बलात्। स्त्री देह के औपनिवेशीकरण का सूत्र यही है, और इस औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति का जो गांधीवादी अहिंसक संग्राम विश्वभर में छिड़ा है, स्त्री आंदोलन के नाम पर भाई या दोस्त जैसे उन पुरुषों की भूमिका उसमें अहम है, जो स्त्री पुरुष के बीच भेड़ भेड़िया वाला रिश्ता नहीं चाहते, एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक संवाद धर्मी रिश्ता चाहते हैं। और जो भेड़ भेड़ियों वाला रिश्ता कायम करना चाहता है, उसे आड़ों हाथों लेना नहीं भूलते। रक्षा से भाई को सूत्रबद्ध करने की कुछ समस्याएं भी हैं। परंपरा की भाषा में ही बात करें तो स्त्रियाँ शक्ति रूपा हैं, स्वयं समर्थ। भाई के रूप में अंगरक्षक उन्हें चाहिए भी तो इसलिए कि इससे शक्ति और समय का अपव्यय रुकता है। युद्ध मिलकर ही लड़े जाते हैं। भाई बहनों की गुंडों से रक्षा करते हैं, तो बहनें भाइयों की दुर्वृत्तियों और बदनामियों से। घर की अदालत में भाइयों के पक्ष से कितने अनाम केस बहनें ही लड़ती हैं। भारतीय कानून संहिता में माता पिता की संपत्ति में बेटियों का हिस्सा निर्धारित करके एक स्वस्थ कदम उठाया गया। इससे दहेज के उन समर्थकों का मुंह बंद हुआ जो चीख चीख कर कहते थे कि दहेज 100% जायज है, क्योंकि दहेज के सिवा माँ बाप बेटियों को देते ही क्या है। पर दूसरी तरह की समस्या खड़ी हो गई। भाइयों का रुख बदल गया। अपनी परेशानियों को हवाला देते हुए वे कहने लगे कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बीच संपत्ति जैसी वाहियात चीज आनी ही क्यों चाहिए। मुसीबत आएगी तो भाई देख लेंगे, वरना छठे छमाए बहने आती रहें, नेक जोग पाकर अपने घर लौटती रहें, यही सिलसिला ठीक है। यथास्थितिवाद के समर्थन में तर्क 2000 दिए जा सकते हैं। भाई भाभी के सामने ये तर्क रहते भी हैं। भाई भाभी तो भाई भाभी, वृद्ध माता पिता भी घर के आक्रामक रूप से घबराकर बेटियों को यही समझाते हैं कि राखी के नाजुक बंधन में पैसे जैसी मामूली चीज के लिए गांठ डालोगी। मुश्किल यही है कि सारी नसीहतें उनके लिए हैं जो नसीहतें सुनती हैं, यानी कि बेटियां। मानव मूल्यों का सारा कोष, सारे त्यौहार और सांस्कृतिक आयोजन पुरुषों ने ही अपनी सुविधा के लिए बनाए। चूंकि भाई को वरिष्ठ माना जाता था, इसलिए बहन की रक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होती थी। यह माना जाता था कि वह रक्षा सूत्र से बंधा रहेगा, किसी भी विमुख कभी भी विमुख नहीं होगा। रक्षा करने वाली बात तो अब खत्म हो गई है। लड़कियां अब कॉल सेंटरों में काम कर रही हैं और पुलिस में भी। ज़्यादातर भाई दबदबा बनाते हैं, बंदिशें लगाते हैं। बहन यदि आज भी अंतरजातीय विवाह करना चाहे तो पिता से पहले भाई उसे रोकने आता है। परिवारों के बिखराव और एकल परिवारों के बनने के बाद रिश्ते भी बदले हैं। ऐसे में यह अहम हो गया है कि भाई की पत्नी बहन को कितना स्पेस देती है। कुछ घरे में तो भाभियों का ऐसा आतंक होता है कि भाई बहन क्या माँ बेटा या पिता पुत्र भी साथ बैठे नहीं पाते। मैंने तो गांव में यह कहावत भी सुनी है, भैया 20 लेना भतीजे 20 देना। यानी रक्षाबंधन या किसी त्यौहार और शादी विवाह के मौके पर भाई से जो कुछ मिला है उसे भतीजे की आड़ में लौटा देना, वरना भाभी भाई को तंग करेंगी। भाभी के आतंक से भाई को बचाने की चिंता एक तरफ, तो दूसरी तरफ पति की मुँह छुट्टी गालियों से भाई को बचाने की चिंता। मैंने तो कई दफ़ा यह भी देखा है कि आर्थिक रूप से स्वायत्त बहने मायके से ससुराल लौटते हुए खुद कुछ महंगा खरीद कर भाई भाभी के सौगात में मिला देती हैं ताकि लालची पति भाई को ताने न दे। वास्तव में रिश्ते पवित्र तब होते हैं जब भाई और बहन दोनों बराबरी पर हों, सामाजिक आर्थिक और ज्ञान की बराबरी हो। स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर अश्लील हो जाता है, पर अश्लीलता से बचते हुए यानी किसी को नीचा दिखाए बिना यदि प्रेम की अभिव्यक्ति होती है अच्छे शब्दों से, छोटे उपहारों से, उपवास आदि छोटे मोटे प्रतीकात्मक त्यागों से, धागों से, कलियों से, तो यह अपने आप में भी अच्छी बात है। दुनिया को एक ध्रुवी बनने, एक ही रंग बिरंग जाने से बचाने की खातिर तो और भी जरूरी है खान पान, रहन सहन, त्यौहार आदि में व्याप्त प्रतीकों से दुनिया को के अलग अलग भूखंडों का सांस्कृतिक प्रतिरोध, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम की शक्ल में। इसलिए त्यौहार मना लें, मगर यह ध्यान रखते हुए कि यह किसी को नीचा दिखाने का उपक्रम तो नहीं बन रहा। अभी अभी मेरी एक सहकर्मिणी के सरकारी अस्पताल में दर्दनाक मौत हुई। उसके IAS भाई उसे पलट कर देखने नहीं आए क्योंकि कचहरी में उसने माँ बाप की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया था। मेरी एक अत्यंत परोपकारी डॉक्टर मित्र, जिसने अपने छोटे भाई को बेटे की तरह पालकर बड़ा किया था और अंत समय में माँ की तत्त्वचित्त सेवा की थी, इन दिनों इस कदर दुखी हैं कि क्या कहूँ। उनके पति भी प्रतापी डॉक्टर हैं, बेटा बेटी तेजस्वी, पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं, न संपत्ति से ऐसा कोई लगाव ही है क्योंकि अपने पैसे भी तो वे दोनों हाथों से लुटाती रहती हैं। पर उनका मन था, उनका क्या, उनकी दिवंगत माँ का मन था, उस बड़े घर का एक हिस्सा उन्हें भी मिले जिसमें उनका बचपन बीता। वहाँ वे स्त्री स्वास्थ्य केंद्र खोले या उसे उन अनंत सेवाओं के केंद्र स्थली बनाए जो वे वैसे भी चलाती रहती हैं। भाई को बहन के यश से ईर्ष्या हुई या माँ के प्रेम पर उसके एकाधिकार से, उसने माँ के संपत्ति का एक कोना भी बहन को देना मंजूर न किया और स्वाभिमान पर चोट खाकर ये भी कचहरी चली गई। कौरव पांडव की कहानी का यह उत्तर आधुनिक संस्करण है जिसमें पांडव बहन है जो लड़ना नहीं चाहती, पर धर्म भाव से या दबावों में कभी लड़ना भी पड़ जाता है तो राखी के धागे की तरह लगातार मन कसकता है और इसकी नौबत ही क्यों आई। हमारे समाज का यह दारुण सच है कि प्रेमिका पत्नी या बहन माथहत और बेचारी सी वो तो अच्छी और रक्षणीय लगती है, वरना आँख का काटा। हरियाणा की एक महिला कांस्टेबल यह बताते बताते बिल्कुल रो पड़ी कि जब तक वह एक साधारण लड़की थी भाई उसे प्यार करते थे, पुलिस में उसके चुनाव के बाद भाइयों का व्यवहार उसके प्रति एकदम ठंडा हो गया है। वे कहते हैं कि अब तो तू खुद मर्द हो गई है, अब तुझे हमारी क्या ज़रूरत है। पहले बहनें किसी भी जाति से प्रेम कर बैठती थी या विधर्मी से, या फिर उनके साथ कोई हादसा हो जाता था तब घर की इज्जत की दुहाई लगाते हुए भाई बहनों से संबंध तोड़ते थे। अब सफलता की सेवा के नए मानदंड कायम करके वे घर की इज्जत बढ़ाती हैं तो यह भी कुछ भाइयों को बर्दाश्त नहीं होता। क्या इस रक्षाबंधन पर आप आत्मविश्लेषण का सूत्र बहनों की कलाई पर बांधने को तैयार हैं? तो आइए, यह कलम आपको रक्षा तिलक लगाती है। मैं उन बहन जी टाइप औरतों में हूँ, बहन जी टाइप होना जिन्हें खलता नहीं क्योंकि बनापे का मर्म वे समझती हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने जिस भाईचारे की बात की थी, बनापा उसका ही अर्थ विस्तार है। धर्म, वर्ग, नस्ल, वर्ण, राष्ट्र आदि कृत्रिम विरोधों के पार जाकर मनुष्य मात्र में IQ के समानांतर EQ और SQ का विकास चाहता है। यह बनापा चाहता है कि तरह तरह की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असुरक्षाओं की मारी इस दुनिया में स्नेहजन भावात्मक सुरक्षा दिलों का टूट बंधन बनकर उभरे। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे बन। साहित्य में भी त्यागमयी बड़ी बहन और बेचारी निरीह मुसीबत की मारी छोटी बहन की छवि रूढ़ हो गई है। हिंदी फिल्मों में मझली दीदी की मीना कुमारी, मेघे ढाका तारा पर आधारित हिंदी फिल्म तपस्या की राखी, इसी तरह की बड़ी बहनें और नाजिमा, तबस्सुम, नंदा, फरीदा जलाल आदि किसी तरह की छोटी बहनें बनकर हिंदी मानस पर राज कर रही हैं। अभी लिखते लिखते ही मुझे लगा कि क्या जाने क्यों ये ज़्यादातर छोटी बहनें मुसलमान रही हैं। नायिकाओं के रूप में मीना कुमारी, मधुबाला आदि को अपनी मुस्लिम यत्ता छुपाना जरूरी लगा, पर बहनों की किसी पुरुष के जीवन में कोई निर्णायक भूमिका मानी नहीं जाती। उनका मुसलमान नाम से प्रसिद्ध होना लोकमानस को ग्राह्य हो गया है। लिखते लिखते यह भी लगा कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसी कोई भोली भाली आदर्शीकृत बहन भी पर्दे पर प्रोजेक्ट नहीं हुई, तो क्या बहनों की वह मार्जिनल भूमिका भी जनमानस से लुप्त हो रही है? सामने आ रही है सिर्फ कुटिल विवाहित बहनें, सीरियलों के षड्यंत्रकारी नंदे, ये सब क्या है? सहज मनुष्यों और सच्चे साथी के रूप में बहनें आपका भावकोश बुद्धिकोश दोनों समृद्ध कर सकती हैं। सही ढंग के भाई बहनों का जोड़ा देखना हो तो रोमेश थापर रोमिला थापर की बात की जा सकती है, आलोक राय सारा राय ज्ञान पांडे और गीतांजलि श्री की भी। दुनिया में दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। भाई बहनों में यह दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है क्योंकि उनके बीच बचपन की स्मृतियों का सुख दुख का साझा कोष होता है। भाई भाई या बहन बहन से भी ज़्यादा समृद्ध भाई बहन का रिश्ता हो सकता है क्योंकि पढ़ी लिखी आधुनिक बहनों से अभंग भास्वर संवाद लगातार आपका भाव पक्ष बुद्धि पक्ष और भाषा पक्ष भी समृद्ध करता रहेगा। इस बार राखी बंधवानों को बढ़ा हुआ हाथ बराबरी की दोस्ती के लिए बढ़ा हुआ हाथ हो जाए तो देखिए जीवन कितना सरस निष्कंटक हो जाता है। देवता जिन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, उन्हें उच्चाशर संकल्पों से रिचार्ज करना जरूरी है। देवता क्या है? उच्चाशय भाव के देवताओं के रूप में प्रकल्पित है। उच्चाशय भाव का बिंब है देवता। बहने और दूसरी मानुषियाँ यौन संबंधों से आज़ाद अन्य सार्थक दोस्तियाँ चूंकि आपको सबलिमेट करना कोष्टक में यौन संबंधों से ऊपर उठकर स्त्री को मनुष्य रूप में जानना मानना सिखाती हैं। आपके जीवन में समाज सापेक्ष उच्चाशय भाव इनके जगाए सहज ही जग सकते हैं। दोस्त तो माँ भी हो सकती है, पत्नी प्रेमिका भी, पर माँ से पीढ़ी का अंतर होता है और बाद में बने रिश्ते के बाद साथ बचपन की स्थितियाँ साझा नहीं होती। इसलिए भाई बहन का रिश्ता कई दृष्टियों से अनूठा है। इसके नए और व्यापक आयाम देने की ज़रूरत है। राखी की एक एक चिमकी दमक कर यह कहती है, न देवकी और गांधारी की तरह व्यक्तित्वहीन, न यमी सुपर्णखा और द्रौपदी की तरह उग्र, बहनों को चाहिए कि वे अतिरिक्तों से बचकर रहें, वरना कंसों शकुनियों रावणों यमों और व्यर्थ के महाभारतों से भर जाएंगी यह मही।